का था, रूह वही, रूप नया।
शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर के पिछले भाग में आपने सुना कि हाशना ने एक बार फिर सोहराब से पेंटिंग वापस मांगने की गुहार लगाई। जब श्रेया को पता चला कि शेयाली मर चुकी है और सोहराब ने बताया कि सलीम शेयाली की बॉडी डबल से जंगल में मिला था, तो श्रेया के होश उड़ गए। क्या इन सारे के सारे वाकयात से श्रेया का कोई ना कोई धागा जुड़ा हुआ है, या फिर कि इसके पीछे किसी तीसरे ही आदमी का हाथ है? इन सारे सवालों के जवाब के लिए सुनिए शोलागढ़ का ये भाग। श्रेया और सलीम के जाते ही सोहराब भी उठ खड़ा हुआ और कोट की जेब से घनी मूछें निकालकर होठों के ऊपर चिपका ली। फेल्ट हैट को माथे पर थोड़ा झुकाने के बाद वो तेज कदमों से बाहर आ गया। गेट से बाहर निकलकर वो पैदल ही कुछ दूर चलता रहा। उसके बाद उसने एक प्राइवेट टैक्सी कर ली। टैक्सी ड्राइवर को उसने पता बता दिया। टैक्सी तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद ही उसने सार्जेंट सलीम की मिनी को पा लिया। सोहराब ने ड्राइवर से मिनी का पीछा करने को कहा। कुछ आगे जाने के बाद ही सोहराब समझ गया कि सलीम की कार का पीछा किया जा रहा है। उसे खतरे का एहसास हो गया था। श्रेया पर फिर हमला हो सकता था। उसने ड्राइवर से पीछा कर रही काले रंग की कार को ओवरटेक करने के लिए कहा। ड्राइवर होशियार था। उसने तुरंत ही कार की स्पीड बढ़ा दी और कुछ मिनटों में वो काले रंग की कार से आगे पहुंच गया। अब सोहराब की टैक्सी मिनी और पीछा कर रही कार के बीच में चल रही थी। पीछा कर रही कार ने कई बार टैक्सी को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने उसे मौका नहीं दिया। सोहराब के कहने पर ड्राइवर ने सलीम की मिनी से टैक्सी इस कदर सटा दी थी कि पीछा करने वाली कार अगर ओवरटेक करती तो दोनों ही गाड़ियों को ओवरटेक करना पड़ता। सोहराब टैक्सी को रोके बिना ही पीछे से आगे की सीट पर सरक आया। उसने कोट की जेब में रखी रिवॉल्वर की मूठ पर अपनी पकड़ बना ली थी। वो काफी सतर्क होकर बैठ गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो बिल्कुल तैयार था। दाहिने तरफ के बैक मिरर में सोहराब लगातार पीछा करने वाली गतिविधियों पर नजर रखे था। कुछ आगे जाने के बाद उसने मोबाइल फोन निकालकर कोतवाली इंचार्ज मनीष का नंबर डायल किया और श्रेया के फ्लैट का पता बताते हुए 3 सादा वर्दी पुलिस में हथियार 24 घंटे तैनात करने के लिए कहा। उसने ये भी ताकीद की कि अगर श्रेया कहीं जाती है तो 2 सिपाही उसका पीछा करेंगे और 1 फ्लैट की निगरानी में रहेगा। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने कोट की जेब में रख लिया। कुछ आगे जाने के बाद सलीम की कार बाईं तरफ मुड़ गई। सोहराब की टैक्सी भी उधर ही घूम गई, जबकि पीछा कर रही कार सीधे चली गई। रोड पर कुछ आगे जाने के बाद सलीम ने कार एक फ्लैट के सामने रोक दी। सलीम कार को सड़क के किनारे पार्क करने के बाद मिनी से उतर आया था। उसने श्रेया की तरफ का गेट खोल दिया। श्रेया नीचे उतर कर फ्लैट की तरफ बढ़ गई। सलीम भी उसके साथ था। दोनों लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। श्रेया ने एक फ्लैट के सामने पहुंचकर डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद एक जवान लड़की ने दरवाजा खोला। उसने श्रेया को देखते ही पूछा, अरे तुम कहाँ थी इतने दिनों से? मैंने तुम्हें कितनी सारी कॉल की थी। अंदर तो चलो, बताती हूँ, उसने पलटकर सार्जेंट सलीम से हाथ मिलाते हुए कहा। थैंक यू सार्जेंट। उसके बाद वो अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी इस बेरुखी पर सलीम बुरी तरह गुस्से में भर गया। वो तमतमाए चेहरे से पलट पड़ा। गुस्से में वो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से उतरता चला गया। 2 मंजिल नीचे पहुंचने के बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जब वो नीचे पहुंचा तो अपनी कार के पास उसने एक घनी मूछों वाले को खड़ा पाया। क्या है?
लिफ्ट चाहिए बरखुरदार?
उसकी आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा और उसने खिसियाए हुए अंदाज में कहा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
आपका पीछा,
सोहराब ने कहा। उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली और सलीम उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। कार धीमी रफ्तार से आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद सोहराब कार सड़क के किनारे लगाकर खड़ा हो गया। उसने मूछें निकालकर जेब में डाल ली और बैक मिरर एडजस्ट करके पीछे के हालात का जायजा लेने लगा। कुछ देर बाद ही उसे एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी बाइक आती हुई नजर आई। वो मुतमईन नजर आने लगा और उसने मिनी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। उसकी कार का रुख होटल सिनेरियो की तरफ था। सुबह के 8:15 बजे थे। होटलों में सुबह बड़ी मनहूस रहती है। ज्यादातर लोग देर तक सोने के आदि होते हैं। डाइनिंग हॉल में भी 10 के बाद ही रौनक नजर आती है। कार पार्क करने के बाद सोहराब और सलीम डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। डाइनिंग हॉल में गिनती के लोग ही नजर आ रहे थे। सोहराब और सलीम कोने के एक मेज की तरफ बढ़े। कुछ देर बाद ही वेटर ऑर्डर लेने आ गया।
एस्प्रेसो।
आमतौर पर सार्जेंट सलीम ब्लैक कॉफी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका मूड कड़वा हो रहा था, इसलिए उसने भी एतराज नहीं किया।
क्या हुआ बरखुरदार, मुंह क्यों लटका है? आज एस्प्रेसो पर भी एतराज नहीं?
जवाब में सलीम ने उसे श्रेया के रूखे सुलूक के बारे में बताया। सोहराब उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनता रहा। उसके बाद उसने कहा,
जंगल में कई दिन साथ रहने के बाद तुम्हारी उससे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तांगे पर हमले के बाद से ही उसका मिजाज बदल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन हमलों के पीछे वो तुम्हें वजह मान रही हो?
अरे, मुझे वजह मानने की भी कोई वजह होनी चाहिए ना।
कुछ तो है जिसे समझना जरूरी है,
सोहराब ने सोचते हुए गंभीर आवाज में कहा।
श्रेया काफी अहम है, उस पर नजर रखना और दिन में एक दो चक्कर जरूर लगा लेना। वो अपराधी न भी हो, लेकिन अपराध की एक कड़ी जरूर है।
किस अपराध की बात कर रहे हैं? श्याली तो मिल चुकी ना?
वो मर चुकी है।
उसकी बात सुनकर सार्जेंट सलीम बुरी तरह चौंक पड़ा। वो बड़े ध्यान से सोहराब के चेहरे को देखता रहा। उसके बाद उसने कहा, मैं उससे मिल आया हूं जंगल में, बल्कि मैंने उसके साथ अच्छा खासा वक्त भी गुजारा है। बस जरा सी गलती हो गई, वरना उसको साथ लेकर आता, उसके बाद ये किस्सा ही खत्म हो जाता। उसकी बात का इंस्पेक्टर सोहराब ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिगार सुलगाने के बाद 2-3 गहरे कश लिए और उससे कहा,
तुम कोशिश करके भी उसे साथ नहीं ला सकते थे।
लेकिन क्यों?
क्योंकि तुम्हें लाने ही नहीं दिया जाता।
मतलब?
तुम जिससे मिले थे वो शयाली नहीं, उसकी बॉडी डबल थी।
बॉडी डबल?
इस तरह के बॉडी डबल का इस्तेमाल फिल्मों में किया जाता है, खास तौर पर जहां स्टंट या जोखिम भरे सीन होते हैं।
पर मेरी आंख धोखा नहीं खा सकती। मुझे जब होश आया था, मैं उसकी गोद में सर रखे लेटा था। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है।
बरखुरदार, मेकअप भी कोई चीज होती है।
ओफो, आप खुलकर क्यों नहीं बता रहे कि आखिर माजरा क्या है? मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा।
सीधा सा मतलब है प्यारे, कुछ भी तो उलझा हुआ नहीं है। दरअसल तुम दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हो, वरना जंगल में ही तुम्हें पूरी बात समझ आ गई होती।
नहीं बताना है तो जिक्र छेड़ा ही क्यों था, सलीम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। इसके बाद वो किसी लड़की की तरह मुंह फेर कर बैठ गया। उसकी सदा पर सोहराब मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो कुछ कहने ही जा रहा था कि वेटर कॉफी लेकर आ गया। कुमार सोहराब ने 2 कॉफी बनाई और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा,
लो कॉफी पियो।
मुझे नहीं पीनी, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं।
अरे कॉफी तो लो, बताता हूँ पूरी बात,
सोहराब ने कहा और सिगार बुझा दी। उसने कॉफी के 2 सिप लेने के बाद बताना शुरू किया।
दरअसल जब श्याली की मौत हुई तो उसे नेचुरल मौत नहीं समझा गया और केस खुफिया विभाग के पास आ गया। इसकी वजह यह थी कि उससे मिलते जुलते कुछ केस खुफिया विभाग के सामने पहले ही आ चुके थे।
सोहराब ने बात रोककर कॉफी के कुछ सिप लिए और फिर बताना शुरू किया।
जब ये केस खुफिया विभाग के सुपुर्द हो गया तो अपराधी ने यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि श्याली जिंदा है, ताकि हम केस बंद कर दें।
मान लिया कि जंगल में श्याली की डुप्लीकेट थी, लेकिन असली श्याली हादसे का शिकार हुई थी या उसने खुदकुशी कर ली थी, इसमें जुर्म का तो कोई एंगल बनता ही नहीं है।
यही कुछ कड़ियां छूट रही हैं जिन्हें जोड़ना बाकी है।
इसका मतलब है कि आप मुजरिम तक पहुंच गए हैं, सलीम ने सोहराब की तरफ देखते हुए कहा।
कुछ हद तक।
तो उसे गिरफ्तार कीजिए और किस्सा तमाम कीजिए।
अभी ये साफ नहीं हुआ कि अपराध की कितनी परतें हैं। जब तक जुर्म की सारी कड़ियां न जुड़ जाएं, मुजरिम पर हाथ डालना आसान नहीं है।
मेरे लिए क्या हुक्म है?
शैलेश जी अलंकार कब से शूटिंग शुरू कर रहा है, पता करने की कोशिश करो। इसके साथ ही श्रेया पर भी नजर रखना जरूरी है।
वेटर बिल ले आया। सोहराब ने बिल अदा किया और दोनों उठ खड़े हुए। बाहर निकलने के बाद सोहराब ने कहा,
तुम मिनी ले जाओ, मैं टैक्सी कर लूंगा।
रात के 11 बजे का वक्त था। काले रंग की एक लंबी सी कार तेजी से भागी जा रही थी। उसमें 3 आदमी और 2 लड़कियां सवार थी। कार एक लड़की ड्राइव कर रही थी। आगे की सीट पर दूसरी लड़की बैठी हुई थी। बाकी 3 मर्द पीछे की सीट पर थे। अंदर पूरी तरह खामोशी थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कार विजडम रोड की तरफ बढ़ गई थी। ये फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का रिहायशी इलाका है। इसी रोड पर श्याली का बंगला था। कार की रफ्तार अभी भी तेज थी। कार कुछ दूर जाने के बाद रुक गई। उसकी हेडलाइट्स बुझा दी गई। आगे की सीट पर बैठी हुई लड़की कार से उतर गई। उसने जेब से कागज निकाला और बेंच पर बैठे आदमी से उसे दिखाकर पता पूछने लगी। रोशनी के लिए उसने मोबाइल की लाइट जला ली। वो आदमी झुककर पता पढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से उसके सर पर इतना नपातुला हाथ पड़ा कि वो सीधे जमीन पर आ रहा। तभी 2 आदमी तेजी से कार से उतर आए। उन्होंने फटाफट रेशम की डोरी से उस आदमी के हाथ पैर बांधे और एक बड़े पेड़ के पीछे डाल दिया। दरअसल ये एक कांस्टेबल था। सोहराब ने कोतवाली से 2 लोगों की ड्यूटी यहां लगाने को कहा था। एक कांस्टेबल रात में चुपके से ड्यूटी छोड़कर सोने चला गया था। शायद दोनों में अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। बारी बारी से दोनों रात में सोने चले जाते थे। सुबह के वक्त 2 कांस्टेबल ड्यूटी चेंज करने आ जाते थे। उनके आने से पहले ही सोने के लिए जाने वाला कांस्टेबल लौट कर आ जाता था। इस वक्त दूसरा कांस्टेबल ड्यूटी पर था, जिसे बेहोश करके किनारे पर डाल दिया गया था। चारों कार में फिर सवार हो गए और कार रेंगते हुए कुछ आगे बढ़ गई। श्याली के बंगले से थोड़ा पहले जाकर कार रुक गई। कार के इंजन से 2 बार घों घों की आवाज आई और कार बंद हो गई। बंगले के गेट पर इस वक्त 3 गार्डों की ड्यूटी थी। आवाज सुनकर तीनों चौंक पड़े। कार ड्राइव कर रही लड़की ने कार से उतरकर उसका बोनट उठा दिया था। बोनट उठने से कार के अंदर बैठे बाकी सभी उसकी आड़ में छिप गए। लड़की बोनट उठाकर कुछ देर अंदर देखने की कोशिश करती रही। उसके बाद वो धीमे कदमों से चलती हुई गार्डों के केबिन की तरफ आई। उसने गार्ड को आवाज देते हुए कहा,
गार्ड साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। स्ट्रीट लाइफ में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। आपके पास टॉर्च होगी?
गार्ड ने टॉर्च उसकी तरफ बढ़ा दी।
आपको दिखानी पड़ेगी, प्लीज,
लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की जवान और खूबसूरत थी। गार्ड तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने मुस्कुराकर अपने बाकी 2 साथियों को आंख भी मारी। कार के पास पहुंचकर गार्ड ने टॉर्च जला ली और रोशनी दिखाने लगा। लड़की झुककर अंदर सभी चीजों को बारी बारी से चेक कर रही थी। तभी कांस्टेबल जैसा हश्र उस गार्ड का हुआ और उसे भी बांध कर दूर कहीं झुरमुट में फेंक दिया गया। दोनों आदमी बड़ी फुर्ती से कार के पीछे जाकर छुप गए। लड़की गार्डों के केबिन की तरफ गई और मुस्कुराते हुए कहा,
आपके साथ ही आपको बुला रहे हैं।
गार्ड बड़ी फुर्ती से बाहर निकला। पास आकर वो चारों तरफ देखने लगा। उसे गार्ड कहीं नजर नहीं आया। उसने लड़की से कहा,
अरे कहाँ है मनोहर?
जी, उन्हें उस तरफ कुछ दिखा था तो उधर ही गए हैं चेक करने।
गार्ड तेजी से अंधेरे की तरफ बढ़ गया। वो कुछ आगे ही गया था कि 2 आदमियों ने उसे दबोच लिया। वो गार्ड भी बिना आवाज के जमीन पर आ रहा और उसके भी हाथ पैर बांध के उसे दूर फेंक दिया गया। लड़की तीसरे गार्ड को बुला लाई। उसे कार में धक्का लगाने का बहाना बनाकर बुलाया गया था। उसका अंजाम भी बाकी 2 साथियों जैसा हुआ। इस काम से फारिग होकर तीनों आदमी लड़की के साथ तेजी से श्याली के बंगले में घुस गए। चारों ने अंदर जाने के लिए गार्ड रूम की तरफ का रास्ता चुना था, क्योंकि गेट पर तो ताला लगा हुआ था। उनमें से एक आदमी गार्ड रूम में बैठ कर बाहर पहरा देने लगा। बाकी 3 अंदर चले गए। लॉन में हल्की रोशनी फैली हुई थी। वो लॉन पार करके बंगले तक पहुंच गए। उनमें से एक ने जेब से एक छोटा सा पेंचकस निकाला और कुछ देर की मशक्कत के बाद बंगले का ताला खोलने में वो कामयाब हो गया। तीनों अंदर बढ़ते चले गए। बंगले में कोई नहीं था। विक्रम इस वक्त रेड मून नाइट क्लब में बैठा जुआ खेल रहा था। तीनों सीधे विक्रम के बेडरूम में घुस गए। लड़की ने आगे बढ़कर वार्डरोब खोल दिया। वार्डरोब का बैक उसने हाथों से सरका दिया। अब वहां एक दरवाजा नजर आने लगा। लड़की ने दरवाजे की सिटकनी गिरा दी। उसे सीढ़ियां नजर आने लगी। वो सीढ़ियां नीचे तक जाती थीं। अंदर एक कम वॉट का बल्ब जल रहा था। लड़की सीढ़ियां उतरने लगी। एक आदमी उसके पीछे चल रहा था। दूसरा वहीं बेडरूम में रुक गया। उनके अंदाज से लग रहा था जैसे वो इस बंगले के बारे में पूरी जानकारी रखते हों। नीचे एक बड़ा सा हॉल था। आदमी ने बढ़कर अलमारी का ताला पेंचकस से खोल डाला। उसके अंदर रखे बैग को लड़की ने उठा लिया और उसके बाद ऊपर आ गई। वार्डरोब को पहले जैसी हालत में करने के बाद वो तीनों बेडरूम में होते हुए बंगले से बाहर निकल गए। चारों कार में आकर बैठ गए। ड्राइवर लड़की ने बोनट नीचे गिरा दिया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी। कार तेजी से आगे बढ़ गई। अगले दिन सुबह 7 बजे शियाली के बंगले पर एक बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बंगले के अंदर इंस्पेक्टर सोहराब, सलीम और कोतवाली इंचार्ज मनीष थे। विक्रम के खान की लाश बेडरूम में पड़ी हुई थी। सोहराब हर चीज की बड़ी बारीकी से जांच कर रहा था। सुबह 6 बजे घटना की सूचना कोतवाली इंचार्ज मनीष ने इंस्पेक्टर सोहराब को दी थी। हुआ यह था कि चोरी से सोने गया गार्ड सुबह 5 बजे लौट कर आया तो उसने अपने साथी को वहां मौजूद नहीं पाया। कुछ देर वो इंतजार करता रहा। उसने उसका फोन मिलाया तो पास ही उसे घंटी की आवाज आती सुनाई दी। वो जब वहां पहुंचा तो उसने साथी कांस्टेबल को बंधा हुआ पाया। उसने उसके हाथ पैर खोले। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हो गई थी। दोनों तेजी से बंगले की तरफ गए तो वहां से गार्ड भी नदारद थे। तलाश करने पर उन्हें तीनों गार्ड मिल गए। गार्ड जब बंगले के अंदर चेक करने गए तो उन्हें बेडरूम में विक्रम की लाश मिली। गार्डों ने कांस्टेबल को और कांस्टेबल ने कोतवाली इंचार्ज को घटना की जानकारी दी। विक्रम की लाश पर चोट का कोई निशान नहीं था। लाश बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। बेडरूम में संघर्ष के कोई निशान नहीं नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर सोहराब ने वार्डरूम खोल कर देखा तो उसे नीचे जाती सीढ़ियां नजर आईं। वो नीचे पहुंचा तो वहां का पूरा नजारा देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। तहखाने में आराइश का पूरा इंतजाम था। सोफे के सामने मेज पर एक ग्लास और शराब की बोतल रखी हुई थी। ऐसा लगता था कि यहां बैठकर शराब पी गई है। गिलास खाली था। पास ही कागज का एक टुकड़ा रखा हुआ था। इंस्पेक्टर सोहराब ने कागज के टुकड़े को उठा लिया। उसने उसे देखा तो उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। तहखाने में भी उसे संघर्ष के कोई निशान नजर नहीं आए। वो अलमारी की तरफ बढ़ गया। वहां उसे हैंडल पर एक लंबा सा बाल नजर आया। उसने बड़े एहतियात से बाल उठाकर जेब में रख लिया। सोहराब ने अलमारी खोल दी। उसे वहां सब कुछ सामान्य नजर आया। उसके बाद वो ऊपर आ गया। जब वो ऊपर पहुंचा तो फिंगरप्रिंट स्क्वाड आ गया था। वो उंगलियों के निशान उठाने की कोशिश कर रहे थे। फोटोग्राफर लाश की तस्वीरें उतार रहा था। सोहराब ने नीचे तहखाने से भी उंगलियों के निशान लेने के लिए कहा। उसने विक्रम से तहखाने में मौजूद शराब और गिलास की जांच करवाने के लिए भी कहा। इंस्पेक्टर सोहराब और सलीम बेडरूम में आ गए। बाहर निकलकर सोहराब ने सिगार सुलगाई और उसका कश लेने लगा। उसने लॉन का भी बारीकी से जायजा लिया। वहां हेड कांस्टेबल तीनों गार्डों के बयान दर्ज कर रहा था। सोहराब और सलीम बंगले से निकलकर सड़क पर आ गए। सोहराब बाहर के उजाले में जेब से बाल निकालकर उसे ध्यान से देखने लगा। बाल की लंबाई बता रही थी कि यह किसी महिला का है। बाल पीले रंग का था। कुछ दिन पहले ऐसा ही एक पीला बाल उसने बंगले के सामने एक पेड़ से बरामद किया था जब विक्रम पर गोली चलाई गई थी। ऐसा ही पीला बाल बिल्ली की लाश के पास मिले रुमाल पर भी था। उसे याद आया हाशना के बाल भी पीले रंग के हैं। ये ख्याल आते ही सोहराब गहरी सोच में डूब गया। सोहराब और सलीम लॉन में आकर बैठ गए। सोहराब के चेहरे पर गहरी चिंता थी। उसने सिगार का एक गहरा कश लगाते हुए कहा, मैं विक्रम के खान को कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो दुनिया का जाना माना पेंटर था, लेकिन वक्त ने उसे बद से बदतर हालात में पहुंचा दिया था। उसकी मौत कैसे हुई? किस नतीजे पर पहुंचे आप? नतीजे इतनी जल्दी नहीं निकाले जा सकते, लेकिन हालात से लग रहा है कि उसने खुदकुशी की है। ऐसा किस बिना पर कह सकते हैं आप? इसलिए कि कमरे में संघर्ष के कोई निशान नहीं है, ना ही उसकी बॉडी पर चोट या खरोंच का कोई निशान मिला है। वो इतना कमजोर नहीं था कि आसानी से उसे काबू में किया जा सकता।
वो इतना बुजदिल तो था नहीं कि खुदकुशी कर ले।
उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है,
इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा और कोट की जेब से सुसाइड नोट निकालकर सर्जेंट सलीम को थमा दिया। सलीम कागज को खोलकर पढ़ने लगा। बहुत ही आर्टिस्टिक राइटिंग थी। कागज पर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था। मैं अपनी शयाली के पास जा रहा हूँ। सलीम ने 2-3 बार उस इबारत को पढ़ा और कागज का रुक्का सुहराब को वापस कर दिया। ये राइटिंग किसी और की भी तो हो सकती है।
मैं विक्रम की राइटिंग पहचानता हूँ। एक बार वो इसी लॉन में किताब पढ़ रहा था, उस पर उसने कुछ नोट लिखे थे, तब मैंने उसकी हैंडराइटिंग देखी थी। फिर भी राइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच करवानी तो होगी ही।
ये भी तो हो सकता है कि उससे जबरन ये सुसाइड नोट लिखाकर उसका गला दबा दिया गया हो।
मुमकिन है।
सोहराब की आवाज गहरी सोच में डूबी हुई थी। सुसाइड नोट से तो लग रहा है कि वो शयाली से बहुत प्यार करता था।
बेइंतहा, वो शयाली को लेकर एक मास्टरपीस बनाना चाहता था। उसकी वो पेंटिंग अधूरी रह गई है।
मास्टरपीस?
स्पेन के मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो की प्रेमिका थी सिलुएट।
लेकिन पिकासो से विक्रम का क्या संबंध?
इत्मीनान रखिए, बताता हूँ। पिकासो की आखिरी प्रेमिका थी सिलुएट। सिलुएट से पिकासो की मुलाकात 1954 में हुई थी। पिकासो तब इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थे। वो फ्रांस के वेलेरियस के आलिशान महल में रहते थे। 17 बरस के पिकासो की जब सिलुएट से मुलाकात हुई तो वो 19 साल की थी। सिलुएट के बाल सुनहरे थे और वो सिर पर ऊंची पोनी बांधा करती थी। पिकासो ने सिलुएट की ऊंची पोनी टेल वाली पेंटिंग बनाई थी। सिलुएट बेहद संकोची स्वभाव की थी। उन्होंने अपनी न्यूड तस्वीर बनवाने से मना कर दिया था। सिलुएट खुद को पिकासो की मोनालिसा मानती थी।
सोहराब ने रुककर बुझे हुए सिगार को दोबारा जलाया और बताना शुरू किया।
शयाली विक्रम की सिलुएट थी।
शयाली ने भी विक्रम के लिए न्यूड पेंटिंग बनवाने से मना कर दिया था। विक्रम सिलुएट की तरह ही शयाली की ऊंची पोनीटेल वाली पेंटिंग भी बना रहा था। अफसोस कि वो पेंटिंग अधूरी ही रह गई।
आपको इतनी जानकारी कैसे हुई?
मैंने एक बार विक्रम के खान को सिलुएट पर एक किताब पढ़ते हुए इसी लॉन में देखा था। मैंने उसे मांग कर वो किताब देखी थी। किताब में उसने कुछ नोट्स लिखे थे। बाद में मैंने खुद भी वो किताब पढ़ी। मैंने शयाली की वो अधूरी पेंटिंग भी देखी थी। विक्रम शयाली को दिल की गहराइयों से प्यार करता था। कुछ कमियों के बावजूद वो भला और अच्छा इंसान था। एक महान पेंटर जिसे वक्त ने तबाह कर दिया।
कुछ देर बाद खामोशी के बाद सोहराब ने कहा,
विक्रम ने खुदकुशी की है या हत्या है ये तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा, लेकिन इसके पीछे जो भी है मैं उसे बख्शूंगा नहीं।
विक्रम की लाश का पंचनामा भर दिया गया था और अब लाश को एम्बुलेंस पर रखा जा रहा था। ठीक तभी लॉन में एक कार आकर रुकी। उसमें से हाशना उतरी और बहुत तेजी से एम्बुलेंस की तरफ बढ़ी। वहां विक्रम की लाश को देखकर वो ठिठक गई। उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया, उसकी आंखें डबडब आईं। वो काफी देर तक यूं ही खड़ी लाश को देखती रही। कुछ देर बाद एम्बुलेंस लाश को लेकर रवाना हो गई। उसके बाद हाशना भारी कदमों से आकर सोहराब और सलीम के पास एक कुर्सी पर बैठ गई। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही।
आपको कैसे पता चला इसके बारे में?
मोबाइल पर एक न्यूज ग्रुप में ब्रेकिंग आई थी।
ओह, विक्रम की मौत के बाद अब आपके दादाजी वाली पेंटिंग भी हमेशा के लिए रहस्य हो जाएगी।
क्या घर की तलाशी में नहीं मिली?
नहीं, अब मैं आपके दादा की मदद करने को तैयार हूं।
इस बीच अचानक सार्जन सलीम अपनी कुर्सी से उठ गया और टहलते हुए एक घुमाव लेकर हाशना के पीछे आकर चुपचाप बैठ गया। उसने बहुत खामोशी के साथ हाशना के सर का एक बाल तोड़ लिया। हाशना ने इस वक्त पोनी बांध रखी थी। बाल तोड़कर सलीम ने रुमाल में लपेट लिया और फिर उसे कोट की जेब में रख लिया। उसके बाद वो एक घुमाव लेकर फिर वापस आकर बैठ गया।
कब मिलना चाहेंगे दादाजी से?
अभी, इसी वक्त।
आप चलेंगे या उन्हें बुला लूं?
नहीं, मैं आपके साथ चलता हूं।
इसके बाद सोहराब और हाशना उठ गए। सलीम वहीं बैठा रह गया। हाशना की कार के पीछे सोहराब की गोस्त शयाली के बंगले के गेट से बाहर निकल गई। सोहराब के जाने के बाद सलीम ने जेब से पाइप निकाला और वैंग गॉग तंबाकू का पाउच निकालकर उसमें भरने लगा। पाइप सुलगाने के लिए लाइटर तलाशने लगा, लेकिन वो नहीं मिला। वो उठकर गार्ड के रूम की तरफ चला गया। मनीष भी वहीं था। उसने गार्ड से माचिस लेकर पाइप सुलगाया और लॉन में ही टहलने लगा। उसका मन उदास था। कैसे एक हस्ती खेलती जिंदगी तबाह हो गई थी। एक एक करके सारी तस्वीरें उसके जहन के पर्दे पर आती और गायब हो जाती। उसने श्याली और विक्रम को पहली बार होटल में देखा था। श्याली उसकी बिल्ली से खेल रही थी। उसके बाद श्याली समंदर में डूब गई। फिर आज विक्रम के खान भी एक लाश के तौर पर उसके सामने था। सलीम को एक बात समझ नहीं आ रही थी। सोहराब इस पूरे मामले के पीछे किसी बड़ी साजिश को मान रहा था, लेकिन सलीम को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सोहराब भी उसे कुछ साफ साफ नहीं बताता था। सब कुछ पर्दे में छुपा हुआ था। अलबत्ता श्रेया पर कुछ हमले जरूर हुए थे, जिसे ओपन क्राइम कह सकते हैं। सलीम साहब, आइए चलते हैं, कोतवाली इंचार्ज मनीष ने पुकारा। उसके पुकारने से सलीम की सोचने की श्रृंखला टूट गई। सलीम मनीष की जीप में आकर बैठ गया और जीप रवाना हो गई। सार्जेंट सलीम सोहराब के साथ गोस्ट से आया था। सोहराब उसे छोड़कर हाशना के साथ चला गया था। अब उसके पास कोई साधन नहीं बचा था। एक बार फिर सार्जेंट सलीम अपनी सोच में गुम हो गया। आखिर इस मामले में श्रेया का क्या रोल है? हाशना को कहां फिट किया जा सकता है? आपको कहां छोड़ दूं? मनीष की आवाज पर सलीम चौंका। मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दीजिए। कुछ देर बाद मनीष ने सलीम को खुफिया विभाग के गेट पर छोड़ दिया। रेटिना स्क्रीनिंग और फिंगरप्रिंट्स के बाद सलीम अंदर दाखिल हुआ। वो सीधे सोहराब के ऑफिस में पहुंचा था। वहां उसने अलमारी पर लगे नंबरों पर कोड डायल किया और फिर एक शीशे पर फिंगर लगाई तो अलमारी खुल गई। सोहराब ने अलमारी पर अपनी उंगली के साथ ही सलीम की उंगली का प्रिंट भी दे रखा था, ताकि वक्त जरूरत पर वो अलमारी का इस्तेमाल कर सके। सलीम ने आज मिले दोनों बाल शीशे की डिबिया में रखे और अलमारी लॉक करके लैब की तरफ चला गया। वहां उसने डिबिया देकर चारों बालों का डीएनए करने को कहा और वापस अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। क्या श्याली की मौत के पीछे श्रेया का हाथ है? क्या श्याली की बॉडी डबल पकड़ी जा सकी? क्या सोहराब ने पेंटिंग दिलाने के लिए हाशना की मदद की? श्याली के बंगले से किस सामान की चोरी हुई और विक्रम की लाश का क्या राज है? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए सुनिए शोलागढ़ 34 किलोमीटर का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।